नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। श्री सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोट से जीत दर्ज की।
I, PC Modi, the returning officer for the vice presidential election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India.
और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। जी दीपेंद्र, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अच्छे अंतर से निर्वाचित हुए हैं और देखा जाए तो जैसी अपेक्षा थी परिणाम भी वैसे रहे।
बिल्कुल प्रियंका, उपराष्ट्रपति चुनाव के हुए मतदान में आज एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 152 मतों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। श्री राधाकृष्णन को कुल 452 मत मिले, वहीं सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। इस चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के 781 सांसदों को मत देने का अधिकार था, लेकिन 767 सदस्यों ने ही मतदान में भाग लिया, जिसमें से 752 वैध मत पाए गए जबकि 15 अवैध घोषित कर दिए गए। राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह चुनाव जो है स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। आपको बता दूं कि इस चुनाव परिणाम को लेकर पूरे देश की नजर थी। हालांकि एनडीए उम्मीदवार श्री राधाकृष्णन के पास बहुमत से अधिक आंकड़ा होने के कारण ऐसा माना जा रहा था कि वे चुनाव में जीत हासिल करेंगे और देश के अगले उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। मतदान जो है आज सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे मतदान किया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जेडीए सांसद एचडी देवेगौड़ा, समाजवादी पार्टी
तो
के
जी हाँ जी दीपेंद्र
सिंधे सहित कई सांसदों ने भाग लिया।
बिल्कुल, आज के जो मतदान के बाद अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है और इस जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। जी श्वेता, इस समय जैसी स्थिति है नेपाल में तो देश को नेतृत्व की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारे में क्या हलचल है?
देखिए, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रपति ने सभी युवाओं से अपील किया है शांति बनाए रखें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से एक हल निकाला जा सके। तो हम सभी को इस बात का इंतजार है कि जो कल की सुबह होगी वो सारे दल मिलके क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि आज तक तो विद्रोह का ही पूरा माहौल था। अभी रात तक मैं देख रही हूँ कि आकाश में अभी भी पूरा गहरा धुआं पूरा छाया हुआ है। तो अभी तो हम लोग प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, कल सुबह उम्मीद की जा सकती है कि आपको कोई ना कोई हल जरूर देगा।
बिल्कुल, धन्यवाद श्वेता इस जानकारी के लिए। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को नेपाल के अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के हवाई अड्डे बंद होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमानन कंपनियों ने दिल्ली से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली और काठमांडू के बीच उड़ानें आज रद्द कर दी गई। इंडिगो ने कहा है कि काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानें स्थगित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। T20 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।